एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है ज्ञान गोष्ठी में।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आम सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। विक्टर ई फ्रेंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग।
हाँ, मतलब इंसान की अर्थ की तलाश।
बिल्कुल
सही कहा आपने। ये किताब सिर्फ मनोविज्ञान की बात नहीं करती, ये तो मानवीय हौसले की, उम्मीद की और सबसे मुश्किल हालातों में, मतलब सोच से भी परे, जीने का मतलब ढूंढने की कहानी है।
और आज के समय में ये बहुत जरूरी भी लगती है ना? जब कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं या अपनी जिंदगी में कोई मकसद, कोई उद्देश्य तलाश रहे होते हैं।
हाँ, या फिर बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं।
बिल्कुल। तो फ्रेंकल के विचार शायद आज पहले से ज्यादा मायने रखते हैं।
तो चलिए आज इसी गहरी और असरदार किताब की दुनिया में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके सबक हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। शुरुआत करते हैं लेखक से। ये विक्टर फ्रेंकल आखिर थे कौन?
विक्टर फ्रेंकल ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, मगर उनकी कहानी सिर्फ, आप कहें तो, डॉक्टरी या अकेडमिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है।
अच्छा।
हाँ, उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए दर्दनाक हिस्सा है जिसने उनके काम को एक अनोखी गहराई दी है।
आप उनके होलोकॉस्ट के अनुभवों की बात कर रही हैं ना?
हाँ जी हाँ, होलोकॉस्ट के दौरान उन्हें नाजी यातना शिविरों में कैदी बनाकर रखा गया था, करीब 3 साल।
3 साल?
हाँ, 1942 से 1945 तक उन्होंने थेरेसियनस्टैड, ऑशविट्स जैसे भयानक शिविरों में बिताए। और ये कोई बाहर से किया गया अध्ययन नहीं था, उन्होंने वो सब खुद झेला
और कीमत भी चुकाई। सुना है उन्होंने शिविरों में अपने माता पिता, भाई
और अपनी गर्भवती पत्नी तक को खो दिया। ये सोचना भी मुश्किल है।
बिल्कुल।
और देखिए, शिविरों में जाने से पहले भी वो वियना में जाने माने डॉक्टर थे, डिप्रेशन और आत्महत्या रोकथाम पर काम कर रहे थे।
अच्छा, तो ये उनका स्पेशलाइजेशन पहले से था?
हाँ, और उन्होंने लोगोथेरेपी नाम से अपनी एक अलग सोच, एक अलग स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी विकसित करनी शुरू कर दी थी। इसे कभी कभी फ्रॉयड और एडलर के बाद वियना का तीसरा प्रमुख स्कूल भी माना जाता है।
मतलब उनकी समझ पहले से थी, लेकिन फिर शिविरों के उन भयानक अनुभवों ने,
हाँ, उन अनुभवों ने उनके विचारों को जैसे कसौटी पर कस दिया, उन्हें और पुख्ता कर दिया।
वो एक पीड़ित भी थे और एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक भी।
बिल्कुल, इसी वजह से उनकी बातों में इतनी सच्चाई और इतना वजन महसूस होता है। अब अगर इस किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग की बात करें तो मोटे तौर पर इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यातना शिविरों में उनके रोंगटे खड़े कर देंगे वाले अनुभवों का ब्यौरा है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक के नजरिए से।
हाँ, ये सिर्फ दर्द और तकलीफ की कहानी नहीं है। फ्रेंकल ये देखते हैं कि उन चरम हालातों में लोग कैसे बर्ताव करते थे, क्या चीज उन्हें हार मानने से रोकती थी और क्या क्या चीज उन्हें जीने की वजह देती थी।
सही। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाते हैं कि क्यों हुआ और कैसे सहा गया।
अच्छा, और दूसरा हिस्सा?
दूसरा हिस्सा है लोगों थेरेपी का परिचय। ये फ्रेंकल का साइकोथेरेपी का सिद्धांत है, और इसका मूल विचार ये है कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा न तो सुख पाना है, जैसा फ्रॉयड मानते थे,
हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल,
और न ही शक्ति पाना, जैसा एडलर मानते थे,
विल टू पावर,
बल्कि अपने जीवन में अर्थ या मकसद खोजना है। इसे वो विल टू मीनिंग कहते हैं।
अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। तो किताब का मकसद ये दिखाना है कि जिंदगी में हर हाल में, यहां तक कि भयानक से भयानक दुख में भी, कोई ना कोई अर्थ ढूंढा जा सकता है।
हाँ, ये उन सब के लिए है जो जिंदगी के मकसद को लेकर सोचते हैं, या जिसे फ्रेंकल ने अस्तित्वगत शून्यता कहा है।
एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, मतलब आजकल की जिंदगी में जो खालीपन या बेमतलब होने का एहसास कई लोगों को होता है।
बिल्कुल। तो ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है, शिविर की कठोर सच्चाई से शुरू होकर इंसान की रूह की गहराइयों तक,
और आखिर में जिंदगी जीने के एक फलसफे तक। ये सिर्फ अतीत का दर्द नहीं, भविष्य की राह भी दिखाती है। चलिए अब किताब के हिस्सों में थोड़ा और झांकते हैं। पहले हिस्से में जहां फ्रेंकल शिविर के अनुभवों की बात करते हैं, वो कैदी के मनोविज्ञान को 3 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण है सदमा, शॉक।
हाँ, वो बताते हैं कि कैसे लोगों को जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर लाया जाता था, फिर ऑशविट्स पहुंचने पर कैसे एक गार्ड का सिर्फ उंगली का इशारा, बस एक इशारा तय कर देता था कि कौन सीधे गैस चेंबर जाएगा और कौन काम करने के लिए बचेगा।
कितनी मनमानी।
और शुरू में तो कैदियों को यकीन ही नहीं होता था कि ये सब सच है, एक तरह का भ्रम कि शायद उन्हें बख्श दिया जाएगा।
और फिर पहचान का पूरी तरह मिट जाना, सब कुछ छीन लेना, कपड़े, सामान, यहाँ तक कि बाल भी।
नाम की जगह बस हाथ पर गुदा हुआ एक नंबर, वो नंबर ही उनकी पहचान थी।
फ्रैंकल की अपनी लिखी हुई किताब की पांडुलिपि, उनका लाइफ्स वर्क, वो भी छीन ली गई।
हाँ, जो उनके लिए जैसे अपने अतीत और भविष्य दोनों के खो जाने का प्रतीक बन गई। मतलब इंसान को इंसान न समझने की पूरी कोशिश।
फिर दूसरा और सबसे लंबा दौर था उदासीनता का, एपेथी।
जी, रोज की भयानक सच्चाई, भूख, बीमारी, कड़ाके की ठंड, गार्डों का जुल्म, रोज मरते हुए साथी, इन सबसे बचने के लिए कैदी जैसे भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते थे।
एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म।
बिल्कुल, फ्रैंकल इसे एक जरूरी दिमागी बचाव का तरीका बताती हैं। सोच बस रोटी, गर्मी और थोड़ी सी नींद तक सिमट जाती थी।
लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी भयानक माहौल में फ्रैंकल ने महसूस किया कि एक अंदरूनी जिंदगी, एक मानसिक दुनिया न सिर्फ मुमकिन थी बल्कि जीने के लिए जरूरी भी थी।
हाँ, उन्होंने यहाँ कुछ अंदरूनी ताकतों को महसूस किया, जैसे प्रेम की ताकत।
प्रेम की ताकत उस माहौल में।
हाँ, वो बताते हैं कि कैसे कड़कड़ाती ठंड में मीलों चलते हुए वो मन ही मन अपनी पत्नी से बातें करते थे, उनकी तस्वीर याद करते थे, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रेम ही इंसान का आखिरी और सबसे ऊंचा लक्ष्य है। प्यार के जरिए ही इंसान बच सकता है, ऊपर उठ सकता है।
वाह।
उन्होंने कुदरत और कला की खूबसूरती की ताकत को भी देखा, कैसे थके हारे कैदी लौटते हुए पहाड़ों पर डूबते सूरज को देखकर एक पल के लिए अपना सारा दुख भूल जाते थे।
एक छोटा सा पल।
हाँ, मगर वो पल भी बहुत कीमती था। यहाँ तक कि हंसी मजाक चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, वो भी मुश्किल हालात से थोड़ी देर के लिए ऊपर उठने का एक जरिया था, आत्मा का एक हथियार।
और शायद सबसे अहम बात, फ्रैंकल ने गौर किया कि जिन लोगों के पास जीने का कोई क्यों था।
हाँ, why? कोई मकसद, कोई उम्मीद, कोई अधूरा काम, कोई प्यारा इंसान जो बाहर इंतजार कर रहा हो, उनके बचने की उम्मीद ज्यादा थी।
जैसा नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने का क्यों हो वो लगभग हर कैसे सह सकता है।
बिल्कुल, फ्रैंकल के लिए ये क्यों उनकी किताब को दोबारा लिखने और अपने अनुभवों के बारे में दुनिया को बताने का सपना था।
उन्होंने ये भी देखा कि क्रिसमस 1944 के आसपास मौतें अचानक बढ़ गई थी।
हाँ, शायद इसलिए कि बहुत से लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि वो क्रिसमस तक घर पहुंच जाएंगे। जब वो उम्मीद टूटी
तो जीने की इच्छा भी मर गई
और उनका शरीर बीमारियों का मुकाबला नहीं कर पाया। ये सब दिखाता है कि बाहर की आज़ादी भले छीन जाए, एक आज़ादी हमेशा रहती है, आखिरी इंसानी आज़ादी,
लास्ट ह्यूमन फ्रीडम।
हाँ, यानी किसी भी हाल में अपना नजरिया चुनने की, अपना रवैया तय करने की आज़ादी।
तीसरा चरण था आज़ादी के बाद का, डिसिल्यूशनमेंट, मोहभंग।
हाँ, और ये सिर्फ खुशी का पल नहीं था जैसा लोग सोच सकते हैं। कई लोगों को तो आज़ादी सच ही नहीं लग रही थी, जैसे वो खुद अपने शरीर में नहीं है। डीपर्सनलाइजेशन।
अजीब है।
और कुछ कैदी आज़ाद होकर वैसे ही क्रूर बन गए जैसे उनके गार्ड थे, बदला लेने की भावना।
और सबसे बड़ा दर्द था मोहभंग, सालों तक जिनके पास लौटने का सपना देखा था,
घर पहुंचकर पता चला कि वो अब है ही नहीं।
फ्रैंकल कहते हैं कि आज़ादी के बाद का दुख भी कैद के दुख जितना ही भारी हो सकता था।
जी, अब आते हैं किताब के दूसरे हिस्से पर, संक्षेप में लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी इन अ नटशेल।
हाँ, यहाँ फ्रैंकल अपने साइकोथेरेपी के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। लोगोस का मतलब अर्थ, तो लोगोथेरेपी मतलब अर्थ पर आधारित थेरेपी।
और ये ज्यादातर भविष्य पर ध्यान देती है, ना कि सिर्फ अतीत के जख्मों पर।
इसकी कुछ खास बातें क्या हैं? पहली आपने बताई, अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग।
हाँ, फ्रैंकल मानते हैं कि ये इंसान की सबसे बुनियादी और ताकतवर इच्छा है। जब ये इच्छा पूरी नहीं होती या इसमें रुकावट आती है, तो एक तरह की अस्तित्वगत हताशा पैदा होती है, एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन।
और इससे फिर चिंता या डिप्रेशन जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
जी, जिन्हें फ्रैंकल न्यूजेनिक न्यूरोसिस कहती हैं, मतलब वो दिक्कतें जो जिंदगी में मतलब की कमी से पैदा होती हैं।
दूसरी अहम बात है जीवन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ।
लोगोथेरेपी कहती है कि जिंदगी का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से बना लें। ये असल में मौजूद है और हमें उसे खोजना पड़ता है हर पल में।
मतलब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है,
बल्कि ये होना चाहिए कि जिंदगी मुझसे क्या चाहती है, हर पल जिंदगी मुझसे क्या मांग कर रही है, और हमारा काम है जिम्मेदारी से उसका जवाब देना।
और फ्रैंकल अर्थ खोजने के तीन मुख्य रास्ते बताते हैं। पहला, कोई काम करके या कुछ बनाकर, उपलब्धि हासिल करके,
हाँ, क्रिएटिव वैल्यूज।
दूसरा, कुछ अनुभव करके या किसी से जुड़कर, जैसे किसी से प्यार करके या कुदरत की खूबसूरती या सच्चाई को महसूस करके,
एक्सपीरियंशियल वैल्यूज।
और तीसरा रास्ता, जो शायद सबसे अनोखा है,
वो है ऐसे दुख के प्रति अपना रवैया चुनकर जिसे टाला नहीं जा सकता। इसे वो अभिवृत्तिगत मूल्य यानी एटीट्यूडनल वैल्यूज कहती हैं।
ये तीसरा रास्ता तब भी खुला रहता है जब पहले दो रास्ते बंद हो।
बिल्कुल, मतलब जब हम हालात बदल नहीं सकते तब भी हम ये चुन सकते हैं कि हम उसका सामना कैसे करेंगे, हिम्मत से, शान से या हार मानकर। यही चुनाव दुख को भी एक मतलब दे सकता है।
फ्रैंकल कुछ तकनीकों का भी जिक्र करते हैं, जैसे विरोधाभासी इरादा, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन।
हाँ, ये डर भगाने का एक तरीका है जिसमें इंसान को जानबूझकर वही चीज चाहने या करने को कहा जाता है जिससे वो डरता है। जैसे अगर किसी को भीड़ में घबराहट होती है तो उसे कहा जाए कि कोशिश करो कि तुम बेहोश हो जाओ, अक्सर डर गायब हो जाता है।
दिलचस्प है। और दूसरी तकनीक,
ध्यान हटाना, डी रिफ्लेक्शन। इसमें मरीज का ध्यान उसकी अपनी तकलीफों और लक्षणों से हटाकर बाहर की दुनिया में किसी सार्थक काम या दूसरों की मदद पर लगाया जाता है,
ताकि वो खुद पर फोकस करने के बजाय किसी मकसद पर फोकस करे।
बिल्कुल। बाद में किताब में एक हिस्सा जोड़ा गया दुखद आशावाद का, ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म।
ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म, ये क्या है?
ये जिंदगी की मुश्किल सच्चाइयों, दर्द, गलती का एहसास और मौत, जिसे वो ट्रेजिक ट्रायड कहती हैं, इनके बावजूद उम्मीद बनाए रखने की काबिलियत है।
मतलब ये स्वीकार करना कि जिंदगी में दुख है लेकिन फिर भी उसमें यकीन रखना।
हाँ, जिंदगी को उसकी तमाम तकलीफों और कमियों के साथ स्वीकार करना, उसे हाँ कहना।
तो इस पूरी किताब से कई गहरे संदेश मिलते हैं। पहला और सबसे अहम, अर्थ की इच्छा इंसान की सबसे गहरी चाहत मतलब खोजना है।
बिल्कुल। दूसरा, आखिरी इंसानी आज़ादी। बाहर के हालात कैसे भी हों, हम अंदर से क्या महसूस करते हैं, कैसा रवैया अपनाते हैं, ये चुनने की आज़ादी हमेशा हमारे पास है।
हम सिर्फ मोहर के गुलाम नहीं हैं।
सही।
तीसरा, तकलीफ में अर्थ ढूंढना। जब दुख को टाला नहीं जा सकता तो उसे हिम्मत और गरिमा से सहना भी अपने आप में एक मतलब बन सकता है, एक जीत बन सकता है।
ये दुख को महान बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसे बदलने की बात है, उसे ग्रोथ का मौका बनाने की बात है।
चौथा, मकसद और भविष्य की ओर देखने की ताकत। जिंदगी की कोई वजह होना हमें आज की मुश्किलों को सहने की गजब की ताकत देता है।
हाँ।
पांचवा, प्यार सबसे ऊंचा लक्ष्य। प्यार चाहे किसी एक इंसान के लिए हो या सबके लिए, जिंदगी को मतलब देने का एक बहुत गहरा जरिया है। ये हमें मुश्किल हालात से ऊपर उठा सकता है।
छठा, जिम्मेदारी ही वजूद का सार है।
मतलब की तलाश जिम्मेदारी से जुड़ी है। सवाल ये नहीं कि जिंदगी से मुझे क्या मिलेगा,
बल्कि ये कि जिंदगी मुझसे क्या चाहती है, मेरी क्या जिम्मेदारी है इस पल में।
और सातवां, दुखद आशावाद, ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। जिंदगी की मुश्किलों के बावजूद जिंदगी के मतलब में यकीन रखना। ये न झूठी पॉजिटिविटी है न निराशा,
ये एक सच्ची यथार्थवादी उम्मीद है। फ्रैंकल की किताब में ऐसी कई लाइनें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ खास विचारों या पंक्तियों पर बात करें?
जरूर। एक तो बहुत मशहूर है जो नीचे से ली गई है, जिसके पास जीने के लिए क्यों होता है वो लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है।
सीधी सी बात है, अगर जीने का मकसद साफ हो तो मुश्किलें झेलना आसान हो जाता है। कितना सच है ये।
और ये शायद किताब का दिल है। एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम रूप, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की, अपना रास्ता चुनने की।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम हालात के शिकार नहीं हैं, हम चुन सकते हैं हमेशा।
एक और दमदार बात, जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि मुश्किलों को भी हम सीखने और बदलने के मौके की तरह देख सकते हैं। हमारा ध्यान बाहरी हालात से हटकर अपने अंदरूनी रवैये पर आ जाता है।
और जिम्मेदारी वाली बात भी बहुत सोचने लायक है। ऐसे जियो जैसे कि तुम दूसरी बार जी रहे हो, और जैसे कि तुमने पहली बार उतनी ही गलत तरीके से काम किया हो जितना तुम अब करने वाले हो।
हाँ, ये एक दिमागी कसरत है जो हमें हर पल को कीमती मानकर, सोच समझ कर और जिम्मेदारी से जीने की प्रेरणा देती है, जैसे हर पर एक दूसरा मौका हो।
ये सारी बातें सिर्फ मुश्किल हालात या अतीत के लिए नहीं है, ये हमारे आज के रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत काम किए, नहीं?
बिल्कुल, जैसे जब हम किसी निजी मुश्किल से गुजर रहे हों, कोई बीमारी, नौकरी जाना, रिश्ते में दिक्कत, तो निराश होने के बजाय हम फ्रैंकल की तरह सोच सकते हैं।
क्या सोच सकते हैं?
हम पूछ सकते हैं, ये हालात मुझसे क्या चाहते हैं, मैं इसका सामना सबसे अच्छे, सबसे सार्थक तरीके से कैसे कर सकती हूँ। ये हमें लाचार महसूस करने के बजाय एक्टिव बनाता है, प्रोएक्टिव।
अपने काम में भी हम सिर्फ सैलरी या प्रमोशन के बारे में ना सोचकर उसमें कोई मतलब ढूंढ सकते हैं।
हाँ, पूछ सकते हैं कि हमारा काम किसी बड़े मकसद में कैसे मदद करता है, या हम उसे और सार्थक कैसे बना सकते हैं। जैसे कोई टीचर सोचे कि वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा रही, बल्कि बच्चों का भविष्य बना रही है।
या कोई डॉक्टर सोचे कि वो सिर्फ बीमारी नहीं, इंसान का इलाज कर रहा है।
बिल्कुल, और आजकल जो बहुत से लोग खालीपन या बोरियत महसूस करते हैं, जिसे अस्तित्वगत शून्यता कहा गया, उससे निपटने में भी ये सोच मदद कर सकती है।
वो कैसे?
लोगोथेरेपी की तकनीकें, जैसे अपना ध्यान अपनी परेशानियों से हटाकर किसी अच्छे काम या दूसरों की मदद पर लगाना, डी रिफ्लेक्शन, ये काफी असरदार हो सकती हैं।
छोटे छोटे बदलाव भी मायने रखते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम में गुस्सा करने के बजाय शांति चुनना या धैर्य का अभ्यास करना।
हाँ, या रोज थोड़ा वक्त निकालकर सोचना कि हमें जिंदगी में मतलब कहाँ से मिल सकता है, क्या कुछ नया सीखकर, क्या अपने रिश्तों को वक्त देकर,
या किसी चुनौती को देखने का अपना नजरिया बदलकर।
बिल्कुल।
तो मैन सर्च फॉर मीनिंग से सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे ख्याल से ये कि इंसान होने का मतलब ही है मतलब की तलाश करना। हमारी सबसे गहरी जरूरत शायद खुशी नहीं, बल्कि ये जानना है कि हमारी जिंदगी का कोई मायने है।
हाँ, और ये मायने सबसे अंधेरे वक्त में भी मिल सकते हैं।
हाँ, और ये भी कि दुख जिंदगी का हिस्सा है, पर वो बेमतलब हो ये जरूरी नहीं। हमारे पास हमेशा ये चुनने का हक रहता है कि हम उसका सामना कैसे करें।
और यही चुनाव दुख को भी ताकत और सीख का जरिया बना सकता है। ये हमें बेचारा बनने से निकालकर जिम्मेदार बनाता है।
ये किताब ये भी इशारा करती है कि शायद खुशी के पीछे भागने से बेहतर है मतलब के पीछे भागना।
बिल्कुल, जब हम कोई सार्थक काम करते हैं तो खुशी अक्सर खुद ब खुद मिल जाती है, जैसे एक साइड इफेक्ट या बोनस।
विक्टर फ्रैंकल का ये काम इंसान की हिम्मत, सहन शक्ति और गरिमा की एक जबरदस्त मिसाल है। ये हमें याद दिलाता है कि मकसद, जिम्मेदारी और सही चुनाव के साथ जीना कितना जरूरी है, अगर उसके पास जीने का कोई क्यों हो।
हाँ, इस गहरी और प्रेरणादायक चर्चा के बाद शायद हम सब अपने जीवन में अर्थ के स्रोतों के बारे में थोड़ा और सोच सकते हैं।
जरूर, और यही सोच शायद हमें अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने की नई ताकत दे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।